सबके जब स्नान वगैरह हो गए, धृतराष्ट्र और गांधारी वे भी आई, क्योंकि उनके भी बेटा मरे हुए थे युद्ध में, वे सब वहां स्नान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने सबको बैठाया, बैठा करके भगवान ने सबको ज्ञान दिया, काल की गति बताई, और भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन अप्रतिक्रियाम, भगवान ने धृतराष्ट्र से भी कहा कि देखो महाराज, अब आपको काल की गति समझ करके, समय का चक्र समझ करके कोई शोक नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो ये जितने दुर्योधन वगैरह मरे हैं, सच पूछा जाए तो वे काल के चक्र में आ गए, इसलिए मरे हैं। और हमने भी उनको बहुत समझाया था, आपको भी समझाया, आप लोग नहीं माने, युद्ध अवश्यम भावी हो गया, अतः इस युद्ध के अंदर भी मारे गए। अब आपको उनके लिए बड़ी शांति रखनी चाहिए और सब प्रकार का शोक दूर कर लेना चाहिए। फिर भगवान ने युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठाया, राजगद्दी पर बैठाने के बाद फिर 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और सब प्रकार से ब्राह्मणों को सबको संतुष्ट किया, और अब भगवान वहां से द्वारिका के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, महाराज युधिष्ठिर के राजगद्दी पर विराजने के बाद भगवान के अध्यक्षता में 3 अश्वमेध यज्ञ हुए और भगवान का भी पावन यश सब जगह फैलने लगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव आदि को लेकर द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। जो ही भगवान रथ के ऊपर विराजमान होने लगे, इतने में ही भय से विवल हुई दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई। अब ये उत्तरा है अभिमन्यु की स्त्री है और परीक्षित की मां है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आकर भगवान की शरण में आई, कहने लगी, हे महायोगिन, हे देवाधिदेव, इस संसार में आपके अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरी ओर ये जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ये मुझे भले ही जला दे, परंतु मेरी कोख में, मेरे पेट में पांडवों की वंश परंपरा मौजूद है, वह वंश नष्ट न हो जाए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप इसकी रक्षा करें। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, मैं अपनी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रही हूं, मैं मेरे गर्भ की रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं। उत्तरा के अंदर मौजूद जो गर्भ है, उस गर्भ के ऊपर उसने प्रहार किया। पांडवों के पास तो 5 बाण आए, उन्होंने 500 बाणों से उनको नष्ट कर दिया, परंतु ये बिचारी अबला और गर्भवती उत्तरा, वो अपने गर्भ की रक्षा कैसे करती, वह भगवान की शरण में गई। ओहो, भगवान भी कैसे शरणागत वत्सल हैं। भगवान उस समय में तत्काल उत्तरा के गर्भ में गए और चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। हे शौनकादि ऋषियों, अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि स्वयमाया आवृणोद गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान भगवान, अपनी माया से उन्होंने उस गर्भ को ढक दिया, कारण कि उनको पांडवों का वंश चलाना था। देखो, ये श्रीमद् भागवत है, ये कल्याण करने का सबसे ऊंचा ग्रंथ है, परंतु इसमें यदि कोई कोई सकाम अनुष्ठान भी किए जाते हैं तो वे भी सफल होते हैं। जहां तक हो सकाम अनुष्ठानों के लिए श्रीमद् भागवत आदि दूसरे ग्रंथों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा संत महात्माओं का सिद्धांत है, परंतु इसकी महिमा बड़ी अपरंपार है। ये पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। इस 14वें श्लोक की एक माला प्रतिदिन फेरने पर जिस स्त्री के गर्भ बीच में ही टूट जाते हैं, बीच में ही खत्म हो जाते हैं, उनके वापस गर्भ के अंदर स्थापना होती है और वे अपना समय पूरा निकाल सकते हैं, ऐसा आनुष्ठानिकों ने बताया है। तो गर्भ की रक्षा के लिए बहुत अच्छा श्लोक है, पहला स्कंद 8वां अध्याय और 14वां श्लोक। इसको गर्भवती स्त्री पाठ करे, इसका एक माला माने 108 बार इसका पाठ करने पर उसके गर्भ की जितनी कमजोरी है वो दूर होती है और बालक गर्भ में अपना समय पूरा निकाल लेता है। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है परंतु उस ब्रह्मास्त्र में भी शक्ति तो भगवान से ही ना आई है, इस कारण भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन्होंने रक्षा की और यह वो बालक था, वो बालक गर्भ में बच गया। अब भगवान फिर वहां से द्वारिका से रवाना होने के लिए प्रयास करते हैं, इतने में कुंती आई है। देखो अपने सामने कौन कौन पात्र आ गए, व्यास जी आए तो वो भी दुखी है, नारद जी आए तो उन्होंने भी अपने पूर्व जन्म का दुख बता ही दिया है, उत्तरा आई है, दुर्योधन आया है और अब ये कुंती आ रही है। प्रथम स्कंद के पात्रों को आप बहुत गहराई से सुनते चले जाएंगे तो पता चलेगा कि जिसका संसार में मन नहीं लगता है वो भागवत का परम अधिकारी होता है। कुंती ने आकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान की स्तुति है ये भागवत में बहुत आती है। तो भागवत में दो प्रकार की बात है, एक तो उपदेश भाग है, एक स्तुति भाग है और एक इतिहास भाग है। तो राजाओं का तो इतिहास है और भगवान की लीलाएं हैं, और दूसरी जगह उपदेश है और भगवान की स्तुति है। भगवान की स्तुतियों को ऐसा ही नहीं छोड़ देना चाहिए, कुंती ने स्तुति की अब चलो आगे चले। प्रत्येक की स्तुति में अलग अलग प्रकार की बातें हैं और कहीं न कहीं ऐसी ऐसी विशेषता हमको मिली जाती है जो पूरे ग्रंथ में ही नहीं मिलती और वहां थोड़े शब्दों में मिल जाती है। तो जिन स्तुतियों से इन पात्रों ने भगवान की स्तुति की है उन्हीं स्तुतियों को करके हम लोग भी वैसे ही आगे बढ़ सकते हैं जैसे किसी डाक के डिब्बे में बहुत से पत्र हैं, उसमें एक पत्र अपना भी चला जाता है तो वो भी कहाँ का कहाँ पहुंच जाए उस थैले में। ऐसे ही संतों के महात्माओं के जो स्तुति भाग है उनकी स्तुतियां करने से हम लोग भी उन संतों के कृपा से, उनके माध्यम से, उनकी स्तुति के साथ जुड़कर भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो प्रयाणाभिमुखम कृष्णम, भगवान अब द्वारिका जाने की तैयारी में है। इतने में ही कुंती आई और कुंती ने भगवान की स्तुति की। ध्यान देवे कुंती की यह स्तुति भागवत में बहुत मार्मिक स्तुति है। भगवान के सभी स्वरूपों की स्तुति यदि एक जगह मिलती है तो वो कुंती की स्तुति है। यहां निर्गुण निराकार रूप से, सगुण निराकार रूप से, सगुण साकार रूप से और बाल कृष्ण रूप से और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप से स्तुतियां की गई है। कुंती ने आकर कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, तुम प्रकृति से परे हो, कोई भी प्राणी आपको जान नहीं सकता है। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, जो सबका प्रकाशक है, अंतर बहिरावस्थितम, अंदर बाहर और उससे भी आगे जो मौजूद है उसको किस उपाय से जाना जा सकता है। आप अवतार लेकर प्रकट जरूर हुए हैं लेकिन माया का एक पर्दा आपने ऐसा डाल रखा है कि कोई भी व्यक्ति आपको इस प्रकार से नहीं जान सकता कि आप वास्तव में क्या है। लेकिन उस पर्दे में से आप सबको देखते हैं, जैसे हम लोग कहीं छिप करके बैठ जाए, जाली वगैरह आगे लगा दे तो हम तो सबको देख सकते हैं परंतु उस जाली के अंदर हम बैठे हुए हमको नहीं देख सकते। ऐसे माया जवनी का छन्न, माया का एक ऐसा पर्दा है आपके पास, आप सबको देखते हैं लेकिन मान तो वेदना कष्टन है। नाहम प्रकाश है सर्वस्य, योग माया समावृत है, मूढ़ोऽयम नाभि जानाति, ये संसार मुझे नहीं जान सकता। क्यों? कि ये हमारा जो पर्दा है उस पर्दे के बाहर है। आप परमहंसों के द्वारा जाने जाते हैं, भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग को प्रकाशित करने के लिए आप ऐसा सब कुछ करते हैं। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नंदनंदन, हे गोविंद, आप कमल के समान नेत्र वाले हैं, कमल की माला पहने हुए हैं और कमल के समान आपका अंग है, चरण है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे कृष्ण, जिस प्रकार से आपने देवकी की रक्षा की है, जिस प्रकार से आपने अपने और भक्तों की रक्षा की है, उसी प्रकार से आपने मेरी भी जगह जगह रक्षा की है। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात, आप जब हमारे स्वामी हैं तो फिर हमारी विपत्तियां कर भी क्या सकती थी। कहां कहां हम आपका या स्मरण करें, माने सब जगह आपने रक्षा की। भीमसेन को जहर दिलाया गया तब भी आपने उसको बचा लिया। वरदान चाहती हूं। भगवान कहने लगे कि बोलो माता, क्या बात है, आप मेरी इतनी महिमा कह रहे हो, कोई वरदान मांगने के लिए तो हमारे पास में कोई अदेय वस्तु नहीं है आपके लिए, जो मांगे सो देने के लिए तैयार। कुंती ने कहा, जो मांगे सो देंगे? क्या बिल्कुल देंगे। अब ध्यान से सुनना हो कुंती ने क्या मांगा। कुंती ने भगवान से मांगा है कि विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, यदि आप देना चाहते हैं तो आप हमारे जीवन में एक एक पग पर विपत्ति से विपत्ति देते रहो। जितनी प्रतिकूलता आप दे सके उतनी प्रतिकूलता आप हमको देते रहो। कि माता जी, कहना तो बड़ा सुगम है, सहना बड़ा कठिन है, कि ये तो मैं भी मानती हूं, परंतु विपत्ति आप मुझे दीजिए। क्या लाभ है जी? क्या देखो, विपत्ति सहने में तो थोड़ी कठिन है, परंतु इन विपत्तियों में जो आपका स्मरण हो आता है और आपके स्मरण से जो जीव का लाभ होता है, वो विपत्तियों के अंदर जीव का नुकसान नहीं होता। जीव को इतना कष्ट नहीं होता है विपत्तियों में, जितने आपके स्मरण से इसको आनंद मिलता है। यदि महान आनंद के लिए थोड़ी सी कठिनाई भी भोगनी पड़े तो कोई हर्जे की बात नहीं है, ये बहुत बड़े लाभ की बात है। कि क्यों, ऐसी क्या बात है, क्यों संसार में विपत्ति में ही मेरा भजन करोगे, अनुकूलता में नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते, ऐसी बात तो नहीं है, परंतु अनुकूलता है, इसमें जीव के सामने बड़ी भारी परवशता आती है। ऊंचा जन्म होगा, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य होगा, बहुत बड़ी विद्या होगी, बहुत बड़ा धनवान होगा, तो एधमान मदपमान, उससे मनुष्य में जीव में घमंड आ ही जाएगा, और जब वो घमंड आता है तो जीव आपके पास आने योग्य नहीं रहता। नैवार रत्य विधातुम वही त्वाम, वह आपको पहचानता नहीं, आपकी बात सुनता नहीं, कानों में तो सूजन है ऐसी कि वो आपकी बात सुन नहीं सकता, घमंडी आदमी। नेत्रों में ऐसी सूजन है कि न तो आपके मंदिरों में जा सकता, न आपको प्रिय लगने वाले संत महापुरुष है उनके पास जा सकता, न उनकी वो सत्संग सुन सकता। इसलिए महाराज, इस जीव का संसार की अनुकूलता में पतन ही पतन है, अतः आप विपत्ति विपत्ति दो ताकि इस जीव का कल्याण हो जाए। महाराज, अकिंचन लोग हैं वही आपका धन है, और आत्माराम जो पुरुष है वही आपके संग साथी है, सबके अंदर आप समान रूप से विराजमान, आप अलौकिक महिमा वाले हैं। मैं आपके विषय में कुछ कह नहीं सकती हूं, मैं क्या नहीं कहूं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी आपके विषय में कुछ नहीं कह सकते, कारण कि आप किस समय में क्या करना चाहते हैं इस बात को कोई नहीं जानता। सब लोगों की बुद्धियां आपके विषय में लड़खड़ा जाती है, कोई कहते हैं कि सगुण है, कोई कहते हैं निर्गुण है, कोई कहते हैं साकार है, कोई कहते हैं निराकार है, क्या बतावे। जो कुछ बताया जाएगा सब आप ही का रूप है, आपसे अलग है ही नहीं। आप देखो, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, सब जगह आप ही की तो व्यापकता है, आपके अलावा दूसरा है कौन। इसलिए सर्वव्यापी प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा, माता आप ऐसी क्या बात करते हो, मैं तो आपके सामने छोटा सा बालक हूं ना, आप तो मुझे बालक रूप से ना देखिए। हां हां कन्हैया, तुम छोटे से बालक हो, वहां भी कैसी कैसी लीलाएं की वो मुझे याद है। एक दिन मैं तुमसे मिलने के लिए यशोदा के वहां पहुंची, तो मैंने उस दिन देखा था कि तुमने यशोदा का एक बहुत पुराना भांड था, माने मटका था, उस मटके को फोड़ दिया था। मटके के फोड़ने के कारण से वह गोपी यशोदा तुमको दंड दे रही थी, उस समय में तुम भय से कांप रहे थे, तुम्हारी मोटी मोटी सुंदर आंखों से जिसमें काजल लगाया हुआ उसके साथ तुम्हारे आंसू बह रहे थे, मां तुमको धमका रही है और तुम मां की पिटाई से बचने के लिए रो रहे थे। वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य, तुम अपना मुख नीचे किए हुए थे, रो रहे थे और आंसू को पूछ रहे थे, वो सारा काजल तुम्हारे कपोलों के ऊपर फैल गया था। मुझे वो स्थिति याद है आज भी जब मैं विचार करती हूँ कि भय भी जिसके सामने भयभीत होता है, वो कृष्ण भय को भी पवित्र कर दिए, भय को भी लेकर के अपने माँ को आनंदित कर दिए। कैसी विलक्षण आपकी लीला है। सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेति, भय को कोई नहीं चाहता परंतु वो भय जब भगवान के पास आता है तो वो भी दिव्य हो जाता है। कैसी विचित्र आपकी महिमा है। लोग कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। कोई आकर के हमको सुनाते हैं कि वसुदेव ने और देवकी ने कोई याचित हो अभ्यगात कोई वरदान मांगा था उसकी पूर्ति के लिए अवतार लिए। कोई कहते हैं कि पृथ्वी पर इतना ज्यादा भार बढ़ गया कि पृथ्वी सह नहीं सकती इसलिए अवतार लिए हैं। कोई कहते हैं कि बेचारे अविद्या से क्लिष्ट जो जीव है उनको ज्ञान देने के लिए आपने अवतार लिया है। कहो कोई, लेकिन मेरे मन में तो एक दूसरी बात है। शिण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितम जनाः तैव पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। आप इसलिए अवतार लेते हैं कि आपके अवतार लेने पर जहां जहां लीलाएं होगी वो स्थान धाम बन जाएंगे, जो जो आप क्रिया करेंगे वो लीलाएं हो जाएंगी, जो जो आप नाम धारण करेंगे वे आपके नाम बन जाएंगे, उन नामों को लोग गाएंगे, कीर्तन लोग करेंगे, धामों का सेवन करेंगे, लीलाओं का चिंतन करेंगे, इतने मात्र से इनका संसार का आवागमन रुक जाएगा। यही आपका प्रयोजन है, और तो दूसरा प्रयोजन मुझे नहीं दिखता है। हे कृष्ण, हम तो नाम रूपात्मक जगत में फंस गए हैं, लेकिन तुम हमारा उद्धार करना। तुम द्वारिका जाने की बात छोड़ दो, अभी हम भरपेट तुमसे बात भी नहीं कर सके, जी भर करके तुमको देख भी नहीं सके। ये हस्तिनापुर का राज्य हमारे लिए किसी काम का नहीं है। देखो कितनी विपत्ति सही कुंती ने, आज उनका बेटा राजा बना है, परंतु भगवान से यही प्रार्थना करती है कि महाराज मुझे हमको राज्य पसंद नहीं है, आप यहाँ कई दिन रहो, हमको तो आप ही अच्छे लगते हो। और महाराज मैं आपसे वरदान चाहती हूँ कि हमारा भाई बंधुओं में बेटा बेटी में जो एक स्नेह है, स्नेह की एक पास है, एक दूसरे से जो हम मोह करके जी रहे हैं, महाराज ये मोह आप, मोह की रसना है, मोह का पास है, मोह का जाल है, इसको आप काट डालिए। इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती के द्वारा ये बात सुनकर के भगवान धीरे से मुस्कुराए और कहा अच्छी बात है माता, तुम हमको नहीं जाने दोगी तो हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी आज्ञा के बिना नहीं जाएंगे। भगवान ने अपना रथ वापिस मोड़ लिया और वे हस्तिनापुर के महल में चले गए, हस्तिनापुर रहने लगे। कई दिन तक वहां रहे, व्यास वगैरह आते थे, दुर्योधन और ये युधिष्ठिर जी आदि के पास में बैठ करके ज्ञान की चर्चा करते थे, परंतु युधिष्ठिर के मन में बहुत दुख था। युधिष्ठिर जी को रात को नींद नहीं आती थी, वो राज सिंहासन वो राजमहल युधिष्ठिर के लिए एक तरह से फांसी के फंदे के समान थी। युधिष्ठिर जी एक बार की बात है रात्रि में जग गए और जगे हुए विचार करने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण जैसे हमारे स्वामी, हमारे सखा, हमारे मित्र, नहीं नहीं हमारे भाई, और फिर हम लोग ऐसा पाप किए, गुरुजनों को मारे, भाई बंधुओं को मारे, और इस राज सिंहासन को हमने प्राप्त किया, देखो हमारा अज्ञान कैसा है। अरे सिंहासन पर बैठता कौन है, शरीर बैठता है, और ये शरीर पारक के सेव देह से परकीय वस्तु है। इस शरीर को इस राज सिंहासन पर बैठाने के लिए मैंने कितने कितने अक्षौहिणी सेना का संहार करवा दिया, कितने बिचारी विधवाएं रो रही है, कितने बालक पितृहीन हो गए हैं, कितने मित्र मित्रहीन हो गए हैं, ये सब का सब कार्य मेरे लिए हुआ है। वो युधिष्ठिर जी महाराज वहां सिसक सिसक करके रोने लगे और फिर विचार करते हैं कि हम इस पाप को कैसे धोए, कि यज्ञ करें, कि नहीं नहीं यज्ञ करने से क्या होगा, न यज्ञ मास्टु मर्रति, अरे कोई कीचड़ लग गया तो उस कीचड़ को कीचड़ से ही थोड़ी उतारा जाएगा। सुरया वा सुराकृतम, मदिरा का कहीं छांटा लग गया तो क्या मदिरा से धोया जाएगा। ऐसी इतनी हिंसाएं जिस पाप में हो गई है, क्या एक यज्ञ की हिंसा और करके हम उस पाप को धो सकते हैं? नहीं धो सकते हैं। बड़ा जी घबराया युधिष्ठिर जी का। वे रातों रात निकल गए अपने घर से, राजमहल से निकल, सोचते हैं कहां जाऊं, मुझे कौन मार्ग बताए। तो चलो अपन कृष्ण के पास। कृष्ण कहां है? तो वो अर्जुन के महल में है। वे रथ में बैठ करके अर्जुन के महल में वहां पहुंचे। पहरेदारों ने देखा कि इस अर्धरात्रि के अंदर महाराज का पधारना, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सीधे बेरोक टोक अर्जुन के महल में गए। आहा, अर्जुन के महल में गए तो युधिष्ठिर जी तो बहुत आश्चर्य में डूब गए। अर्जुन तो पलंग के ऊपर खर्राटा मार के बड़े निश्चिंत होकर के सो रहा है, ध्यान दे रहे हो, और भगवान उसको उस पलंग से नीचे बैठ करके हाथ है यो अपने गोद में रख करके आंखों में आंसू लिए हुए रो रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन तो निश्चिंत होकर सो रहे हैं और भगवान ध्यान कर रहे हैं। इतने में धीरे से युधिष्ठिर जी महाराज वहां अंदर गए। अंदर जाकर के देखा कि वो बड़ा विचित्र काम है, अरे जैसे मेरे को नींद नहीं आई, ऐसे आज अर्जुन को भी नींद नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि जो पाप हमारे द्वारा हुआ है स्वजन वध का, क्या वो अर्जुन के द्वारा नहीं हुआ है? लेकिन अर्जुन तो आराम से निश्चिंत होकर सो रहा है, जाने किसके भरोसे निश्चिंत है, और होना तो यही होगा कृष्ण के भरोसे निश्चिंत होगा। लेकिन कृष्ण भी तो किसी को याद कर रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं, कृष्ण भी ध्यान कर रहे हैं। अब और तो बात भूल गए युधिष्ठिर जी, कृष्ण की मुद्रा देखने लग गए। चुपचाप जाकर युधिष्ठिर जी कृष्ण भगवान के सामने बैठ गए। कई देर तक जब भगवान यूं ध्यान किए हुए बैठे रहे, तब सहसा भगवान का नेत्र खुला, ध्यान टूटा और देखा कि महाराज युधिष्ठिर पधारे हैं। कि महाराज आप पधारे, चुपचाप कैसे आए? इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर आप पहले दीजिए। कि फरमाइए, बोलिए क्या बात है? कि महाराज आप तो सबके ध्येय हैं, सब आपका ध्यान करते हैं, आप भी आंख बंद करके किसी का ध्यान किया करते हैं? कि हाँ महाराज, मेरे लिए भी कोई न कोई ध्येय है, बस यही समझना चाहता हूं, आपसे बड़ा कोई नहीं, फिर आप ध्यान किसका करें? महाराज जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं, जो मेरा नाम लेता है मैं उसका नाम लेता हूं, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं, जो मेरे लिए आगे बढ़ता है उसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं, जो इस समय मुझे याद कर रहा है उसी को ही मैं याद कर रहा हूं। कि महाराज इस समय कौन आपको याद कर रहे हैं? कि रणांगण में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, और मैं भी यहां बैठा हुआ भीष्म भीष्म बोल रहा हूं, वो मेरे स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, मैं उनके स्वरूप का ध्यान कर रहा था। महाराज आप यहां क्यों आए? कि महाराज मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मैं तो जंगलों में रहना चाहता हूं, सब राजगद्दी छोड़ देना चाहता हूं। कि क्यों? कि मैंने बड़ा भारी पाप किया, भाई बंधुओं को मारा, उनकी राजगद्दी ली, गुरुजनों को मारा, राजगद्दी ली, मुझे बड़ी ग्लानी हो गई है। क्या हो? ये ग्लानी राजगद्दी से नहीं, तुम्हारी मूर्खता से हुई है, तो भीष्म पितामह के पास चलो, वो तुम्हारे सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे। क्या अच्छी बात है? प्रातःकाल हुआ, सब अपने अपने रथों में बैठे, सब जगह हल्ला हो गया कि पांडव आज भीष्म पितामह के पास कृष्ण के साथ जा रहे हैं। अब बड़े नारद है, पर्वत है, धौम्य है, व्यास जी है, सबको मालूम चला। उन्होंने कहा कृष्ण भगवान भी जा रहे हैं भीष्म पिता के पितामह के पास, चलो हम भी चलेंगे। अरे भाई वहां कोई पारिवारिक चर्चा होगी, और कोई बात है, तुम लोग क्यों चलो? कि जहां कृष्ण जाएंगे वहां पर गए बिना हमारा मन करता ही नहीं है, वहां तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो सब रवाना हो गए, और क्या बतावे, ब्रह्मरात सुखदेव जी भी वहां पर रवाना हो गए। सुखदेव जी भी वहां पर पहुंच गए, सब ऋषि मुनि संत महात्मा पहुंचे भीष्म पितामह के चारों ओर विराजमान। वहां पर पांडव भी पहुंच गए, भगवान भी पहुंच गए। जब वहां सब पहुंचे तो युधिष्ठिर जी महाराज वगैरह पहले प्रणाम किए भीष्म पितामह को, और फिर भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान को देखा और अपने मन से उनकी पूजा की, और फिर युधिष्ठिर की ओर इशारा करके भीष्म पितामह ने कहा कि हे धर्मात्माओं, बड़े कष्ट की बात है, आप लोग भगवान के आश्रित हुए, धर्म के आश्रित थे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए था, परंतु फिर भी आपके यहां कष्ट आया है। ये सब का सब आप अपना भाग्य ही मानिएगा, ये सब कालकृत है, समय के द्वारा बनाया हुआ है, आपको इस विषय में कोई दुख नहीं उठाना चाहिए। देखो जहां धर्मनंदन तो राजा हो और गदापाणी वृकोदर हो, गांडीव धनवा अर्जुन हो, वहां पर विपत्ति आए, और कृष्ण जिनका मित्र है उनके ऊपर भी विपत्ति आए। नहीं नहीं, ये अच्छा हुआ आप लोगों पर विपत्ति आई, ताकि दुनिया वालों को हम ये तो कह सकते हैं कि भाई तुम अनुकूलता चाहते हो, कृष्ण भगवान जिसके रथ को चलाते थे उस अर्जुन के सामने प्रतिकूलता नहीं आई क्या? युधिष्ठिर जी महाराज को देखकर भगवान अपना आसन छोड़ देते थे, क्या उन युधिष्ठिर के ऊपर विपत्ति नहीं आई? विपत्ति सब पर आती है, इस कारण से इतनी अनुकूलता होते हुए भी यदि आप लोगों पर विपत्ति आई है तो आने वाले लोगों के लिए बड़ा धैर्य होगा, वे सब ये देव तंत्रम, ये सब भाग्य का ही खेल है, ये बात उन लोगों को विचारों को समझ में आ जाएगी। पर एक बात याद रखना, ये कृष्ण तुम्हारे ममेरे भाई हैं, हमारे माम हमारे हमारे भुआ के बेटा है, और कृष्ण के तुम ममेरे भाई हो, केवल इतना ही तुम्हारा और इनका संबंध नहीं है। तुमने तो कृष्ण को कभी दूत बना दिया, कभी सूत बना दिया, लेकिन ये दूत सूत के लायक नहीं है, ये तो वास्तव में सर्वात्मा है, समदृष्टि वाले हैं, अद्वय है, अहंकार से रहित है, अनहंकृत है, इसके अंदर कोई बुद्धि में विषमता नहीं है, एकांत भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। आहा हे पांडवों, आज कितनी मेरे पर कृष्ण ने कृपा की है, अब मैं प्राण छोड़ना चाह रहा हूं, कृष्ण मेरे सामने उपस्थित है। एक बार भी जो भक्ति के अंदर अपने मन को डुबो करके और बड़े प्रेम से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भगवान का नाम ले लेता है तो हे पुत्रों, वह इस संसार से बहुत आसानी से तर जाता है। त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी, वह कामनाओं के कीचड़ से, कर्मों के दलदल से बहुत जल्दी उभर जाता है जो बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए अपना शरीर छोड़ता है। हे देवादिदेव श्री कृष्ण, जब तक मैं अपने शरीर को न छोड़ दूं तब तक आप मुझे यहां दर्शन देते रहे। आप अपना वो हंसी से खिला हुआ मुख है और आपका जो कमल के समान नेत्र है उसके मैं दर्शन करूं और आपका ध्यान मैं अपने मन में करूं, इस प्रकार से आप मेरे सामने मौजूद रहेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज पितामह, आप तो इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं और हमको श्री कृष्ण ने आपसे ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा है, तो महाराज आप हमको वैराग्य का रूप बताओ और राग का क्या स्वरूप है वो बताओ। दान धर्म है, राज धर्म है, मोक्ष धर्म है, स्त्री धर्म है, भगवत धर्म है, इनका आप संक्षेप से और विस्तार से वर्णन सुनाओ। तब नाना प्रकार के इतिहासों को सुनाया और तत्वविद भीष्म पितामह ने देखा कि अब उत्तरायण का समय आ गया है, सूर्य भगवान उत्तरायण में आ गए हैं। तब उन्होंने अपने वाणी को समेट लिया, मन की वृत्तियों को अपने में स्थित कर लिया, आदि पुरुष में अपना मन लगाकर संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अपने इंद्रियों का निग्रह करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। देखो एक बात बता दें कि श्रीमद् भागवत में स्तुतियों में कई जगह अलग अलग छंद हैं, लेकिन भीष्म पितामह की स्तुति का छंद ऐसा है कि जो मरने वाला व्यक्ति जैसे लड़खड़ाते बोलता है ऐसे लड़खड़ाते हुए वो छंद है। इतनी स्वाभाविकता है इस भागवत के पात्रों में और इतनी स्पष्टता है कि उसको जरा गहराई से हम लोग सुने देखें तो पता चलता है वेदव्यास जी महाराज ने किस ढंग से श्रीमद् भागवत को हमारे सामने उपस्थित किया है। भीष्म पितामह के इस प्रार्थना के स्तुति के श्लोकों को हम लोग गा नहीं सकते हैं, कारण कि वो मरते समय में बोल रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्व सुखम उपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति में उपे यशु यद भव प्रवाह है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे यदुश्रेष्ठ भगवान, आप अपने महान आनंद के अंदर लीन रहने वाले हैं। आपने तो केवल संसार को चलाने के लिए प्रकृति का सहारा लिया है। मेरी बुद्धि आपके अंदर स्थिर हो, मेरी बुद्धि में अब कोई किसी प्रकार से कोई तृष्णा नहीं है। मैं तो केवल आपका तमाल के समान श्याम वर्ण वाला रूप है उसको देखना चाहता हूं, और सूर्य के किरणों के समान फड़फड़ाता हुआ आपका जो वस्त्र है उसका ध्यान करना चाहता हूं, और आपके घुंघरालू बाल जो आपके सिर के ऊपर बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं उनका ध्यान करना चाहता हूं, और मुझे किसी की भी कोई किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध के अंदर आपके उस स्वरूप को देखा हूं, जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन की आज्ञा से वो रथ लाया जा रहा था, और उस रथ के लाए जाने पर जब दोनों सेनाओं के बीच में आपने रथ को खड़ा कर दिया, तब सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य, आपने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया, और जो ही आपने यूं अपनी दृष्टि से हम लोगों की ओर देखा और पांडवों की ओर देखा, हम तभी समझ गए थे कि इनमें से कौन तो जिंदा रहने वाला है और कौन मरने वाला है। आपका संकल्प उस समय में ये था कि ये सब मरने चाहिए, हम सब समझ गए थे आपकी उस बात को। अर्जुन उस समय में हम लोगों को देखकर घबरा गया, स्वजन वधाद विमुखस्य, वह अपने आत्मीय लोगों को मारने से डर गया, मारने से डरा अर्जुन, मरने से नहीं डरा, वो मारने से डर गया था और वो युद्ध से लौटना चाहता था। आहा, कितना अच्छा आपने उसको दिव्य उपदेश दिया है, उस उपदेश का कुछ कणक हमारे कानों में भी पड़ा है। कुमतिम अहरद, आपने उसकी दुष्ट बुद्धि को हर लिया और ऐसी विलक्षण आत्मविद्या आपने दी है, आहा, ऐसा लगा कि हम आपको छोड़कर और कहीं न जाएं, आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। हे कृष्ण, आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। और जब वो दोनों सेनाएं आपस में खूब धनाधन युद्ध चल रहा था, बाण चल रहे थे, उस समय में अर्जुन के रथ को आप बड़े तेजी के साथ सेनाओं के बीच में लाते घुमाते जब आप मेरे सामने खड़ा किए थे, क्या विचित्र आपकी वो रूप माधुरी थी। युधि तुरग रजो विभू विधूम्र विश्वक कच लुलित श्रमवार अलंकृतास्य, आपका कितना अच्छा अलंकार वहां, आपके आभूषण क्या आभूषण थे कि वहां घोड़ों के टाप से उड़ने वाली मिट्टी आपके घुंघरालू बालों पर और मुख पर आकर के जम गई, और बड़े वेग से आपका रथ चल रहा था तो वायु के वेग के कारण से आपके घुंघरालू बाल कभी कभी आपके आंखों के सामने आते थे, तब आप जोर से यूं पछाटा मार करके बालों को ऊपर करते थे। आहा, बहुत सुंदर आपका वो रूप लगता था, आप तो महाराज उस दिव्य रूप को हमें दिखाइए। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतम अधिकर तुम, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको शस्त्र उठवा के रहूंगा। महाराज भरी उस सेना के अंदर 18 अक्षौहिणी सेना के अंदर आपने मेरी बात रखी और आपने अपनी बात खत्म की, ये क्या, ये आपका अनुग्रह नहीं तो क्या है। स्वनिगम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को आपने छोड़ दिया, और मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को आपने सत्य किया है। उस समय में जब मेरे तीखे तीखे बाण आपके हाथों में लगने लगे, और अर्जुन को तो हमने चारों तरफ से बाणों से आवृत कर दिया, अर्जुन का तो हाथ चल नहीं सका, आह, कितना भक्त के ऊपर आपका अनुग्रह, भूल गए कि मैंने प्रतिज्ञा, अब एक साथ दोनों पर कृपा की, अर्जुन पर भी कृपा की और मेरे पर भी कृपा की। अर्जुन पर तो ये कृपा की देगा, देख अर्जुन तेरे को बचाने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करता हूँ, और मेरे पर ये कृपा की देखो भीष्म पिता मैं तुम्हारे सबके सामने तुम्हारी बात रखता हूँ, एक साथ दोनों भक्तों का प्रिय करने के लिए आप तत्काल धृतरथ चरण है नीचे कूद करके अर्जुन के रथ को, अर्जुन के रथ के पहिए को खींच करके आप मेरी तरफ दौड़े थे, आह मैं तो उस समय निहाल हो गया, मेरा योद्धा बनना सफल हो गया और आपने मुझे निहाल कर दिया। महाराज आप मुझे उसी रूप को बताइए। परंतु उस समय में एक विचित्र बात थी जो किसी के ध्यान में नहीं आई, वो आपके और मेरे बीच के ध्यान की बात थी। आप ही उस बात को जान गए और मैं भी जान गया। वो कौन सी बात थी पितामह? कि जब आप वो रथ का चरण लेकर पहिया लेकर मेरी ओर आए, उस समय में पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी ने देखा कि भाई इनकी तो प्रतिज्ञा है कि मैं जब जब धर्म की ग्लानि होगी तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये तो प्रतिज्ञा अपनी तोड़ रहे। तो पृथ्वी बिचारी घबराई। तो आपका जो अपना पीताम्बर है, जो पीताम्बर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं, वो पीताम्बर पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी देखो मैं प्रतिज्ञा तोड़ू चाहे रखू, तेरा तो काम पूरा करूंगा। तो आपने एक तरह से पृथ्वी को आश्वासन दिया था, गतोत्तरी है, आपका वो पीताम्बर नीचे पड़ गया, पृथ्वी को आश्वासन मिल गया। एक ही तीर से कितने शिकार आपने किए हैं, वो दिव्य आपकी झांकी है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। महाराज मेरे जीवन में बहुत अपराध हुए हैं, मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था, आपके ऊपर बाण नहीं फेंकने चाहिए थे, मुझे तो अपनी बाणी आपकी तरफ फेंकनी चाहिए थी, बाण नहीं फेंकने चाहिए थे। परंतु महाराज आपका भी अनुग्रह कोई एक रूप से नहीं बरसता है, आपके इतने अनुग्रह मेरे पर बरसते हैं, तो मैं आपके अनुग्रह को देख करके ही बाण बरसा रहा था। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करना, कितना दिव्य आपका रूप है। वो बिचारी गोपियां अपने स्वरूप को भूल करके आप में लट्टू हो गई, उन गोपियों का कोई कसूर नहीं है। हम लोग आपके चलने पर, बोलने पर, मुस्कुराने पर, देखने पर लट्टू हो जाते हैं, तो वो बड़ी भाग्यशाली गोपियां हैं जो आपके ऊपर सर्वस्व न्योछावर कर चुकी हैं। धन्य है वे गोपिकाएं और धन्य है आप। अब तो महाराज हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, बस आपका ध्यान और आपका स्वरूप ही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। तमम अहम अजम शरीर भाजाम, आप एक अद्वितीय हैं, जैसे एक ही सूर्य है, वो पृथ्वी पर रखे हुए अलग अलग पात्रों में अलग अलग दिखता है लेकिन है एक ही, इसी प्रकार से अलग अलग शरीरों में जो अलग अलग आत्माएं हैं वो केवल आप ही है और वे आपसे सर्वथा अभिन्न है, सब मिलकर के एक है, मैं आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी वाणी को वही रोक दिया, अपने आप को अपने आप में संतुष्ट कर लिया, अपने आप में रोक लिया, और फिर धीरे धीरे उनकी श्वास की गति रुकने लगी और अंत में भीष्म पितामह भगवान का ध्यान करते 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 परम धाम को प्राप्त हो गए। हे शौनकादि ऋषियों, जब भीष्म पितामह परम धाम को प्राप्त हुए, उस समय में संपूर्ण पृथ्वी पर एक सन्नाटा छा गया। वयांसी दिनात्ये, जैसे संध्या के समय में पक्षी दिनात्ये, संध्या के समय में पक्षी एक बार शांत हो जाते हैं, ऐसे भीष्म पितामह के शरीर शांत होने के बाद एकदम नीरवता छा गई। और फिर थोड़ी देर के बाद देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। और युधिष्ठिर जी महाराज थोड़ी देर तो दुखी हुए, लेकिन फिर ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने कहा युधिष्ठिर ऐसी मृत्यु के ऊपर दुख नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी युधिष्ठिर जी को संभाल लिया और फिर अंत में युधिष्ठिर जी महाराज ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया। इसमें तो नहीं आया है लेकिन एक जगह आया है, ऐसा आख्यान आता है, युधिष्ठिर जी के मन में आया कि आज तक जहां भीष्म पितामह का किसी का भी संस्कार नहीं हुआ, ऐसी जगह पर ले जाकर भीष्म पितामह का संस्कार करूंगा। गंगा जी के तट के चारों तरफ घूमे फिरे, देखा कौन ऐसा स्थान हो सकता है, फिर देखा कि हाँ ये बहुत से वृक्षों के बीच का स्थान बड़ा पवित्र है, यहाँ शायद किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ होगा, चलो यहाँ संस्कार किया जाए। चिता बना दी, देह रख दिया और ज्यों ही वहां अग्नि दी गई त्यों ही आकाशवाणी हुई कि अरे युधिष्ठिर अत्र भीष्म शतम दग्धम, यहाँ 100 बार भीष्म पितामह का संस्कार हो चुका है, इसी भीष्म का संस्कार हुआ है, इस पृथ्वी को तुम मशान के समान नहीं समझते क्या? ऐसा समझते हो कि पृथ्वी के मशान अलग है और दूसरे क्षेत्र अलग है? जितने लोग रह रहे हैं सब मशानों में रह रहे हैं। जैसे मशानों में रहने वाला वैराग्यवान होता है, सावधान होता है, ऐसे ही पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों सावधान रहो, हम मशानों में रह रहे हैं, सब जगह मरते हैं, सब जगह जले हुए हैं, इसलिए तुम इस अधेड़ बुन में मत रहना, इस अज्ञान में मत रहना कि भीष्म पितामह का संस्कार ऐसी जगह किया है जहां आज तक किसी का संस्कार नहीं हुआ हो। युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ी प्रेरणा ली इस आकाशवाणी से, वे अपने महल में लौट आए, भगवान भी कई दिन वहां रहे और फिर युधिष्ठिर जी महाराज वहां पर बहुत अच्छे राज्य का संचालन करने लगे। कहते हैं युधिष्ठिर जी के राज्य में समय पर वर्षा होती थी, युधिष्ठिर जी के राज्य में नदियां समुद्र सब बड़े प्रसन्न थे, औषधियां भी समय पर खिल जाती थी, धन धान्य से सब प्रजा सुखी थी। कई दिन कई महीनों तक भगवान वहां रहने के बाद अब वहां द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान एक रथ के अंदर विराजमान हो गए। अब वहां देखो स्त्री पक्ष एक तरफ हुआ है, हस्तिनापुर में स्त्री पक्ष है, वो एक तरफ आकर भगवान से कहता है महाराज आप छोड़ के जा रहे हैं सुभद्रा द्रौपदी तनया विराट तनया और गांधारी। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया माने उत्तरा और गांधारी, ये सब के सब आकर के कहने लगे कि देखो जिस आदमी को एक बार सत्संग मिल जाता है वो सत्संग को छोड़ नहीं सकता है, और यदि सत्संग को छोड़ दे तो वो भाई बड़ा शूरवीर है। सत्संगात मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्साहते बुधे, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है कि वो सत्संग को कभी छोड़े ही नहीं। सकृत आकर्ण्य रोचनम, एक बार भी जो आपकी बात को सुन लेता है वो कैसे आपको छोड़े, फिर दर्शन कर ले तो फिर कहना ही क्या है। महाराज अब आप तो जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है, हमने आपको बहुत दिन तक रोक लिया, अब हम आपको नहीं रोकेंगे, अब आप पधारिए। भगवान रथ के अंदर विराजमान हो गए, हस्तिनापुर से विदा ले रहे हैं। सब प्रेमियों का हृदय है वो दुखी हो रहा है, आंखों से लब लब आंसू बह रहे हैं और भगवान रथ के अंदर विराजमान हो गए। उद्धव जी महाराज ने सात्यकी ने दोनों ने चंवर ले लिया और एक बहुत अच्छा छत्ता था वो छत्ता अर्जुन ने ले लिया, बड़े प्रेम से भगवान को पहुंचा रहे हैं। भगवान हस्तिनापुर से महल से निकल करके जब राजमार्ग से जा रहे हैं उस समय में बहुत से ब्राह्मण हैं जो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सत्यास्तत्र द्विजयरिता, उन्होंने आशीर्वाद को सुना। कैसे आशीर्वाद है जी, कि नाना रूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मने, भगवान को ही निर्गुण माने तो वो भगवान के लिए आशीर्वाद उपयुक्त नहीं थे, और सगुण मानते हैं तो वो आशीर्वाद भगवान के लिए उपयुक्त थे। ऐसे उपयुक्त अनुपयुक्त आशीर्वादों को लिए हुए भगवान बढ़ रहे हैं। सब अंतःपुर वालों को मालूम चला, हस्तिनापुर वालों को मालूम चला कि भगवान अब यहां से विदा हो रहे हैं वासुदेव, तब वे अपने अपने घरों के अंदर स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। बहुत सुंदर बातें देखो, भोली भोली बातें हैं, कितनी गहरी बातें हैं, प्यार भरी बातें हैं। देखो भगवान कभी अपनी स्तुति को सुनते हैं छिप करके, कभी सुनते हैं प्रकट होकर के, और कभी तो ऐसा ऐसा गूढ़ भाव रख करके सुनते हैं तो भगवान को भी अपनी स्तुति से बड़ा आनंद आता है, इसलिए वो स्तुतियां वो आपस की बातचीत अपने को भी सुननी चाहिए। एक सखी बोलती है कि हे सखी सवई किलायम पुरुष है पुरातन, यही वो पुराण पुरुषोत्तम है जो निर्विवेश निर्विशेष था और जिसने संकल्प करके सृष्टि को बनाया है। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं सखी, ये तो नाम रूप वाला था ही नहीं, लेकिन ये तो हम लोगों को आनंदित करने के लिए नाम रूप वाला बन करके आया है। अरे तुम्हें क्या पता, हम आपको दूसरी बात बतावे, आज तक तुम भी नहीं जान सकती, हम भी नहीं जान सकती, वेदेशु गुह्येषु च गुह्यवादि भी, वेदों में भी इसका चरित्र ऐसा विचित्र है कि कोई पूरा जान नहीं सकता है। जो गुप्त से गुप्त बातों की खोज करने वाले हैं उन्होंने भी बहुत सी बातों का खोज कर लिया, लेकिन इस कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है इसका खोज करना उनके लिए भी बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन देखो सखी सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते, ये संसार को बनाता भी है, पालता भी है, अपने में समेट भी लेता है, परंतु कहीं आसक्त नहीं होता, ये कितनी विचित्र बात है। इसलिए हे सखी इसकी कथा तो जितनी आप हम कहें सुने बहुत अच्छी लगती है, और सखी तुमको मालूम है इसके बारे में। एक सखी कही नहीं नहीं हमको खूब अच्छी तरह से मालूम है, ये यदुवंश बड़ा श्रेष्ठ है, देखा नहीं मलयाचल पर्वत है वो चंदन के कारण से श्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार से ये कृष्ण है इनके कारण से आज यदुवंश की कीर्ति फैल गई है, सामान्य यदुवंश नहीं है बहुत विलक्षण है। और सखी द्वारिका कितनी अच्छी होती होगी जहाँ के प्रजा लोग इसके नित्य प्रति दर्शन करते हैं। चलो सखी क्या द्वारिका में महल नहीं बना सकते, क्या द्वारिका में हम नहीं रह सकते, कि नहीं नहीं द्वारिका में क्यों, अपने तो हस्तिनापुर में ठीक है, कभी आएंगे दर्शन कर लेंगे। नहीं सखी, ये द्वारिका इतनी श्रेष्ठ है, कुशस्थली पुण्य यशस करी, यह तो पुण्यात्माओं के यश को बढ़ाने वाली द्वारिका है, कितनी पवित्र द्वारिका है। चौथी सखी बोलती है कि अरे नहीं, द्वारिका तो है ही, लेकिन भाई जिन स्त्रियों का इन्होंने अपने हाथ में हाथ रखा है, जिन स्त्रियों को इन्होंने पत्नी रूप से स्वीकार किया है और जिन्होंने प्रद्युम्न और साम्यवादी को जन्म दिया है, आहा वे स्त्रियां कितनी भाग्यशाली हो सकती हैं। स्त्रियों की जो स्त्रीता है, स्त्रीत्व है, वो इस कृष्ण के साथ जुड़ने में सफल हो गया है। माने स्त्रियों का स्त्रीपना आज हम लोगों के गौरव को बढ़ाने वाला है। हम कह सकते हैं कि भाई कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी, बताओ 16,108 कितने भक्त हुए, कोई नाम ले सकता है? हम कह सकते हैं कि 16,108 पत्नियां थी उनके, अर्थात हमारे स्त्रियों का गौरव कृष्ण ने बढ़ाया है, और जो कृष्ण की पत्नियां हैं उन्होंने हमारा गौरव बढ़ा दिया है। ऐसी वो आपस में बात कर रही थी, ध्यान से सुनना, निरीक्षणे न अभिनंदन सस्मिते न ययौ हरि। भगवान चुपके चुपके उनकी बातों को सुन रहे थे और भगवान भी उनकी भोली भाली बातों को सुन के मुस्कुरा रहे थे, और फिर भगवान आगे रवाना हो गए। भगवान फिर हस्तिनापुर से पार होकर कुरु जांगल आदि देशों को पार करते करते मत्स्य सारस्वत देशों को पार करके और द्वारिका में पहुंचे। जब भगवान द्वारिका में पहुंचे तो अपने हाथ में वो शंख लिया, शंख लेकर के और जोर से वो शंख बजाया। सूत जी महाराज कहते हैं बड़ा विचित्र वो शंख है, स उच्च कोशी धवलो धरो धरो प्यरु क्रमस्या धर्षोण सोमिना। भगवान के होठ हैं वो तो है लाल लाल, भगवान के कपोल और ललाट वगैरह ये श्याम वर्ण वाले, भगवान के हाथ हैं उनमें कुछ ललाई है कुछ श्यामता है, और फिर वो सफेद एकदम पांचजन्य शंख है उसको लिया और अपने होठ पर रखा तो ऐसा लगा कि जल के ऊपर कोई हंस आकर बैठ गया हो। और जो ही भगवान ने जोर से वो शंख बजाया, सब प्रजा आनंदित हो गए कि आहो कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, ये शंख तो वही बजा सकते हैं। प्रत्युद्ययु प्रजा सर्वा, सारी की सारी प्रजा आनंदित होकर दौड़ दौड़ करके बाहर आई। फिर भगवान के स्वागत सत्कार के लिए मंत्री लोग अपने हाथ में पूजा की सामग्री लेकर आए, और अब पूजा, भाई पूजा तो मन से होती है ना, अब मन तो रह गया कृष्ण में और पूजा की सामग्री, कभी कोई चीज भूल गई कभी कोई चीज रह गई, अब वो भगवान को उपालम देने लगे। नता स्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। हे कृष्ण, हम तो आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आपके चरणों को तो ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं, इंद्र भी प्रणाम करते हैं, एक क्षण भी आप चले जाते हो तो हमारे लिए बहुत लंबा समय हो जाता है। आप ये विचार नहीं करते कि हम द्वारिका वाले भी आपके ऊपर जी रहे हैं। तो तत्राब्द कोटि प्रतिमा क्षणो भवत, एक क्षण हमारे लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान लंबा होता है। आप महाराज द्वारिका को इतना लंबा मत छोड़िए, हस्तिनापुर में जाकर बैठ गए तो आप बैठ ही गए। भगवान उन सब की बातों को सुने हैं और फिर भगवान के सामने सब ऋतुओं में खिलने वाले फल वगैरह उपस्थित किए। भगवान फिर द्वारिका में पधारे। द्वारिका नगरी की क्या शोभा बतावे, द्वारिका की बड़ी विचित्र शोभा है, बड़े बड़े वहां पर दरवाजे हैं, लंबे चौड़े वहां पर राजमार्ग है, सब जगह वहां पर प्रकाश की व्यवस्था है, द्वार द्वार के ऊपर मालाएं वगैरह है, उग्रसेन है, अक्रूर जी हैं, बलराम जी हैं, सब वसुदेव जी आदि अपने हृदय से प्रेम करने वाले कृष्ण को देख करके प्रसन्न हो गए हैं, और फिर भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार किया है। भगवान सबको आनंदित करते हुए अपने महल के अंदर गए, वहां पर अपनी देवकी आदि सात माताएं हैं, सातों माताओं के चरणों में प्रणाम किए हैं, और सातों माताएं प्रेम में इतने ही डूब गईं, उनके वहीं पर दूध आने लग गया और कृष्ण को अपने छाती से लगा लिया। फिर भगवान 16,108 रानियों के जो महल हैं उन महलों में गए। आज पत्नियों के मन में इतनी खुशी है, इतनी प्रसन्नता है, हमारे प्राणनाथ बहुत दिनों के बाद आए हैं। साकम व्रत व्रीडित लोचना नना, उन्होंने कई कई प्रकार के व्रत किए थे कृष्ण के बिना, वो व्रत आज उनके पूरे हो गए, कृष्ण की उपलब्धि हो गई, व्रत पूरे हो गए। अपने सामने अपने पति को देखे हैं, उस समय में प्रेम से उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, और पास ही उनके बेटा है, उन बेटों को वे अपने छाती से लगा लगा करके कृष्ण प्राप्ति का उत्सव मना रही है। देखो सोनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कैसी विचित्र लीला है। उद्दाम भाव पिशुना मलवल गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनु पियासाम। भगवान श्री कृष्ण की वे प्राण प्रियसी प्राण प्रियतमाएं वरांगना वो श्रेष्ठ स्त्रियां इतनी सुंदर थीं और उनका बोलना चालना इतना मधुर लगता था कि कामदेव भी उनकी सुंदरता को देख करके विचार करता था कि हमारी रति भी इनके सामने इतनी सुंदर नहीं है। वे स्त्रियां सबकी सब मिलकर के भी कृष्ण को किसी प्रकार से मोहित नहीं कर सकी, यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता है। तमाम मन्यतम लोक है, अरे इसी ये साधारण प्राणी क्या समझेंगे कृष्ण की असंगता को। इतनी सारी स्त्रियां, लोग कहते हैं कृष्ण ने बहुत से विवाह किए, अरे बहुत से विवाह किए लेकिन असंग कितने रहे, एक विवाह के अंदर ही लोग आसक्त हो जाते हैं, वहां इतना विवाह किया, इतनी स्त्रियां थी लेकिन भगवान की कोई उनमें आसक्ति नहीं हुई। तो ये भगवान के विषय में ऐसी गलत धारणा क्यों हो जाती है सूत जी महाराज कि आत्मोपम्य न मनोजम। लोग अपने अपने अपनी आदत से भगवान की आदत का आंकलन करते हैं, अपने स्वभाव से भगवान के स्वभाव को सोचते हैं, भगवान भी ऐसे होते होंगे। नहीं नहीं, इतनी स्त्रियों के बीच में रहकर भगवान ने सबको असंगता का उपदेश दिया है, यही भगवान का भगवत्व है, यही ईश्वर की ईश्वर का ऐश्वर्य है। इन सब के बीच में रहकर के भी किसी प्रकार से वे उनमें आसक्त न होवे, और वे स्त्रियां भी यही समझती थी कि शायद भगवान हमारे अधीन है। नहीं नहीं, अप्रमाण विद है, उनको भगवान के विषय में पूरा ज्ञान भी नहीं था। इन रानियों को कैसे ज्ञान नहीं था कि बहुत अच्छी उपमा दी है, ईश्वरम मतयो यथा, जैसे अहंकार की वृत्तियां अपने साक्षी आत्मा को नहीं जान सकती, इसी प्रकार से ये जितने भी 16108 रानियां हैं ये अपने से श्रेष्ठ पुराण पुरुषोत्तम भगवान की भगवत्ता को नहीं जान सकती थी। सौनक जी महाराज कहते हैं महाराज आप कहां का प्रसंग कहां ले गए, हम आपसे परीक्षित के विषय में सुन रहे थे, आप ले गए थे कहां द्वारिका में ले गए, ये ले गए, क्या बात है। देखो भागवत है ये कोई व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान को पहले सजाना पड़ता है कि ये बात कहेंगे ये बात नहीं कहेंगे। भागवत माने भागवत एक भाव है, चाहे वो भगवान का भाव हो और चाहे वो किसी महात्मा का भाव हो, जहां भाव की प्रधानता होती है वहां पर व्याख्या की प्रधानता नहीं रहती। तो जब वो भगवान के विषय में सूत जी महाराज कहते चले गए तो उस प्रवाह में बह गए। सौनक जी ने कहा महाराज परीक्षित के विषय में बता रहे थे, उस परीक्षित के विषय में सुनाओगे। हाँ भाई बड़ा अच्छा किया, उत्तम वक्ता भी वही है कि जो भाव के अनुसार चलता है, और उत्तम श्रोता भी वही है कि जो उन भावों को समेट करके वापिस अपने प्रसंग पर आ जाता है। तो सौनक जी महाराज ने कहा महाराज परीक्षित के विषय में बता रहे थे कि हाँ भाई अब परीक्षित के विषय में सुनाते हैं। तो राजा युधिष्ठिर जी ने प्रजा का पालन किया, युधिष्ठिर जी महाराज के मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं थी। अरे कोई आदमी बहुत तृप्त है, भूखा नहीं है, उसकी भूख दूर हो गई है, ऐसा यदि कोई आदमी किसी प्रकार से कोई फल प्राप्त करे या कोई अच्छा भोजन प्राप्त करे, रूखा सूखा भी भोजन प्राप्त करे तो उसका मन जाएगा, कहने वो तृप्त है, उसका कहीं मन नहीं जाएगा। इसी प्रकार से युधिष्ठिर जी महाराज भगवान की सेवा में भगवान की भक्ति में तृप्त थे, इसलिए लौकिक पदार्थों की उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी। इधर परीक्षित के विषय में बताते हैं कि जिस समय में भगवान परीक्षित की रक्षा के लिए गर्भ में गए थे, उस समय में परीक्षित ने माने उस गर्भस्थ बालक ने, उत्तरा के गर्भ में रहने वाले बालक ने एक दिव्याति दिव्य पुरुष को देखा, वो अंगूठे जितना था। देखो ये अंगूठा जितना बताते हैं ना, ये आगे भी आएगा, दूसरे स्कंद में भी आएगा कि भगवान का ध्यान करो तो भगवान का स्वरूप अंगूठे जीते समान समझो। तो वहां प्रश्न आता है कि शरीर के इतने अवयव हैं, अंगूठे का ही नाम क्यों लिया? तो अंगूठे का नाम इसलिए लिया कि जैसे हमारे अंगूठे की आकृति है, ऐसी के ऐसी हमारे हृदय की आकृति है, और भाव है वो हृदय में पैदा होते हैं, इसलिए भगवान को अंगूठे जितने बताया गया है। तो यहां भी बताया कि भगवान अंगूठे जितने हैं, चार उनकी भुजा है, किरीट कुंडल उनके देदीप्यमान है, पीताम्बर धारण किए हैं, लाल लाल उनके नेत्र हैं, और अपने हाथ से भी गदा घुमा रहे हैं, गदा घुमा करके और अश्वत्थामा के अस्त्र से उस गर्भस्थ बालक की रक्षा किए हैं। और जब उसकी रक्षा हो गई तो देखते देखते ही भगवान तत्रीव अंतर दधिरे हरि, वहीं पर भगवान अदृश्य हो गए, और फिर वो बालक रक्षित हो गया। समय आया और अच्छे ग्रहों में देख करके बाल और अच्छे समय में उस बालक का जन्म हुआ। जो ही उस बालक का जन्म हुआ, पता चला कि युधिष्ठिर जी के यहाँ पौत्र हुआ है, तो सारी राजधानी में बड़ी खुशियां मनाई गई, सब जो है लोग बड़े प्रसन्न हो गए। हिरण्यम बहुत सोने का दान दिया पृथ्वी और पृथ्वी का दान दिया, गऊ का दान दिया और ब्राह्मणों को भी दान दिया। वो दान देने का समय कौन सा था? प्रजा तीर्थे स तीर्थवित, प्रजा तीर्थ समय में दान दिया। नालोच्छेदन से पहले पहले जो दान होता है वो अक्षय दान होता है, श्रेष्ठ दान होता है और उस समय में उसमें किसी प्रकार से सुवादोष नहीं लगता है, अतः वो दान दिया गया उस समय में। ब्राह्मण लोग वहां आए ही थे तो भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी, इसलिए उसका नाम विष्णु रात है। देखो सुखदेव और परीक्षित ये नाम तो इनके हैं ही, इनके और भी नाम है। ब्रह्मरात तो नाम है सुखदेव जी का और परीक्षित का नाम है विष्णु रात। क्यों है जी? कि रातो वही अनुग्रहार्था ये विष्णु ना, विष्णु ने उसकी रक्षा की इसलिए उसका नाम विष्णु रात रहा, उसकी विष्णु रात के नाम से प्रसिद्धि हुई। कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि महाराज आप लोग इस बालक की कुंडली बताइए, इसकी बताइए इसकी क्या जन्म की बात रहेगी, कैसे कैसे इसके जीवन रहेंगे बताइए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो महाराज, ये साक्षात इक्ष्वाकु के समान तो प्रजा की रक्षा करने वाला होगा, ये ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करने वाला होगा। जिस प्रकार से सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री राम हुए थे दशरथ नंदन राम, इसी प्रकार से ये होंगे। दान देने में ये शिवी के समान होंगे। यश के अंदर क्या बतावे, जिस भरत के नाम से इस भारतवर्ष का नाम हुआ है उसके समान इसका यश फैलेगा। धनुषधारी तो अपने दादे से किसी प्रकार से कम नहीं होगा। शरणागतों की रक्षा करने में हिमालय के समान नहीं होगा और सिंह के समान पराक्रमी होगा, समुद्र के समान बड़ा गंभीर होगा, धैर्य के अंदर बलि के समान ये होगा। इस प्रकार से तरह तरह से अश्वमेध यज्ञ करेगा, वृद्धों का बड़ा उपासक होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, रंतिदेव के समान उदार होगा, बड़े इसमें दिव्य गुण है। दृष्टि जी ने कहा देखो भाई, संसार में जो जन्म लेता है कहीं कहीं तो इतनी विशेषता है तो कुछ न कुछ इसमें कमी भी आए, जरा देखो तो सही। क्या? हाँ महाराज, एक इसमें कमी है, इसकी आयु ज्यादा नहीं होगी। जवानी में जब ये सुनेगा कि तक्षक के द्वारा मेरी मृत्यु होने वाली है तो वह अनशन करके गंगा जी के तट पर बैठ जाएगा, सबको छोड़ छाड़ के वहां बैठ जाएगा। फिर महाराज क्या बतावें, जैसे इसका जीवन पवित्र है ऐसी इसकी मृत्यु भी बड़ी पवित्र होगी। जिज्ञासितात्म याथात्म्य, वह अपने यथार्थ बोध के लिए वहां पर बैठेगा कि आखिर यथार्थता क्या है, सत्यता क्या है, इस बात की जो इसके मन में जिज्ञासा होगी तो महाराज स्वयं व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज इनके पास आएंगे और आकर के इनको इतना विलक्षण ज्ञान देंगे। वो ज्ञान केवल एक परीक्षित का नहीं, न जाने कितने कितने परीक्षितों का कल्याण होगा, कोई इसमें अंत नहीं, कोई इसको कह नहीं सकता है। इस प्रकार से विलक्षण कार्य इस परीक्षित के द्वारा होगा। ब्राह्मणों को खूब सम्मान देकर के, दान देकर के विदा कर दिया और इधर परीक्षित का पालन किया जाने लगा। अब ये छोटे से बालक परीक्षित थे, इनको कोई भी गोद में लेता तो बड़े सावधानी से उसकी सकल सूरत देखते थे, यूं एकदम देखते थे। क्यों? कि उन्होंने अपने माता के पेट में एक दिव्य आकृति वाले को देखा है तो इसके मन में है कि भाई वो आकृति मुझे दिखाई नहीं दे रही, बात क्या है। एक बार की बात है, भगवान द्वारिका से यहां हस्तिनापुर आए थे और छोटे से उस परीक्षित को लोगों ने गोदी में खिलाया तो ये भी क्या, चारों तरफ सब बैठे हुए थे अपने अपने आसनों पर, ये छोटा सा बच्चा बीच में एक एक को देखे हूं तो थोड़ी देर तो युधिष्ठिर के पास जाके देखे तो फिर आगे मुड़ जाए, भीमसेन को देखे तो आगे मुड़ जाए, अर्जुन को देखे तो आगे मुड़ जाए, ऐसे देखते 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 जो ही श्री कृष्ण के ऊपर उसकी नजर पड़ी और खिलखिला करके हंसते हुआ वो गुडाले चल रहा था, घुटनों के बल पर दौड़ा दौड़ा आया और कृष्ण की गोद में बैठ गया। बोलिए आनंद कंद भगवान। भगवान इस भाषा को तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे कि इस बालक की भाषा क्या है और ये बालक क्या चाहता है। भगवान कुछ दिन वहां रहे और फिर वहां अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद युधिष्ठिर जी महाराज से आज्ञा लेकर भगवान अर्जुन के साथ में वापिस द्वारिका में आ गए। भगवान के द्वारिका में आ जाने के बाद इधर क्या हुआ, सूत जी महाराज आगे की बात कहते हैं, कोई प्रसंग नहीं है इसका। वो कथा कह रहे हैं भाई यहां प्रसंग नहीं है तो क्या हुआ, कहीं कहीं इसका प्रसंग मिलेगा। तो पहले ही बता दिया है कि पहले स्कंद की कथा है, ये आगे के स्कंदों के साथ जुड़ने वाली है। भागवत एक ऐसा आपस में मिला हुआ ग्रंथ है कि इसमें यदि एक चीज को छोड़ दी जाए तो स्वतः ही लगेगा कि यहां कोई चीज अपूर्ण रह चुकी है। सूत जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए और मैत्री जी से ज्ञान लिए, जितने उन्होंने प्रश्न किए थे उन सब प्रश्नों का समाधान बीच में से सुन करके बीच में से लौट आए। जितने प्रश्न किए आप देखना, बताएंगे आपको तीसरे स्कंध में लंबे चौड़े प्रश्नों की एक सूची बनाई, लेकिन वो सारे प्रश्न का समाधान किए नहीं, बीच में विदुर जी आ गए। क्यों आ गए? देखो प्रश्न करते समय में मनुष्य के मन में कई प्रकार के अज्ञान रहते हैं, लेकिन तात्विक बात मिल जाने के बाद, एक बात के मिल जाने के बाद कितने प्रश्नों का समाधान हो जाता है, अतः वो बीच में ही आ गए कि भाई वास्तविक बात तो मिल गई, लेकिन विदुर जी महाराज के मन में ये बात थी कि मेरा कल्याण हो और साथ साथ में मेरा कल्याण हो बड़ी बात नहीं है, मेरे से संबंध रखने वाले धृतराष्ट्र आदि उनका भी कल्याण होना चाहिए। इस प्रकार से उस भावना से विदुर जी महाराज अपने यहां हस्तिनापुर आए। आज युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया विदुर जी का और बड़े प्रेम से उनको बैठाया और फिर पूछा कि महाराज आप तो तीर्थों में गए हैं, आपको तीर्थों में जाने से क्या होगा? महाराज जहां आपके चरण पड़ते हैं वही तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि स्वान्तस्थेन कदाभृता। अरे महात्माओं के चरण जहां रखते हैं वो जगह तीर्थ क्यों होती है? कि महात्मा अपने हृदय में भगवान को जान लेते हैं, अतः भगवान को अपने हृदय में लिए फिरते हैं, तो जहां महात्माओं के चरण रखे वो तीर्थ हो गया। तो महाराज आप तो तीर्थों में जाए गए तो आपने तीर्थों में क्या क्या देखा? तीर्थों में तो आप घूमते घूमते द्वारिका भी गए होंगे, भगवान श्री कृष्ण के इस समय में क्या समाचार है वो भी हमको बताओ। अब विदुर जी महाराज ने देखा कि भगवान तो इस धराधाम को छोड़कर चले गए, अब क्या बात बतावे? अपने को कभी अप्रिय बात बतानी नहीं चाहिए। लोक में भी देखते हैं किसी के परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है तो जल्दी से जाकर सहसा नहीं कहते हैं, धीरे धीरे कहते हैं कि भाई उनका स्वास्थ्य कैसे क्या चल रहा है। मालूम है कि अमुक आदमी का देहांत हो गया, लेकिन फिर भी पूछा जाता है यूं अनजान के, भाई उनका स्वास्थ्य कैसे क्या चल रहा है, मालूम है क्या? कि साहब बहुत खराब चल रहा है। तो खराब चल रहा है तो आपको भी जी उनकी सेवा के लिए उनके घर पर ही जाना चाहिए, ज्यादा नहीं इधर उधर बाहर नहीं रहना चाहिए। फिर वो घर में जाता है देख तो लेता ही है। तो ये कोई आज की परंपरा नहीं है, ये हमारे सदा की शिष्टता की परंपरा है। ननु अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम। अरे ये बात जो है वो अपने आप ही उपस्थित हो जाएगी, कह करके उस बात को एक और ढंग से बढ़ावा दे करके और उस बात से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए वे कुछ भी नहीं बोले और सामान्य बात कह दी कि भाई सब कालकृत है, समय से जो होना चाहिए वही होता है, हम तीर्थों में घूम आए, ज्ञान प्राप्त कर लिए। इस प्रकार से करके युधिष्ठिर जी को बात समझा दी, किन किन तीर्थों में गए उन सब की बात बता करके अपनी बात को विराम दे दिया। अब कुछ दिन तो विदुर जी महाराज रहे। अब विदुर जी महाराज ने एक दिन धृतराष्ट्र के पास में जाकर उसको समझाना चालू किया, अरे धृतराष्ट्र जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने इतना बड़ा बड़ा पाप किया था, आज उन्हीं पांडवों के देवे टुकड़े को खाकर तुम जी रहे हो, अपने प्राणों का पोषण कर रहे हो, तुम जीना चाहते हो? जानते हो भीमापवर्जितम पिंडम, भीम के द्वारा तिरस्कृत अन्न तुम खा रहे हो, और भीमसेन है इसको मारने के लिए तुमने कितना कितना उद्योग किया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र को यह मालूम चला कि मेरे 100 बेटे भीम की प्रतिज्ञा के अनुसार भीम से मारे गए, तो धृतराष्ट्र ने कहा आओ भीम हम तुमसे मिलना चाहते हैं। भगवान को मालूम था कि धृतराष्ट्र में इतना बल है वो भीमसेन को कुचल देगा मिलने के बहाने से। भगवान ने कहा कि आप एक लोह का भीम बनाओ और उसके पीछे असली भीमसेन को खड़ा कर दो और कह दो हाँ पिताजी मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं, ऐसा तो बोल दो, और लोहे वाले भीमसेन को आगे कर दो। तो वो धृतराष्ट्र कहा आओ भीम बेटा, आओ भीम बेटा, यूं करके हाँ पिताजी मैं आपके सामने हूं, हाँ पिताजी आपके सामने हूं, लोह वाला भीम आगे किया तो उसको उन्होंने छाती से लगा करके जोर से यूं किया तो लोह का भीम था वो टूट के नीचे गिर गया। इतनी ताकत थी धृतराष्ट्र में और वो भीमसेन के साथ इतना बैर रखते थे। विदुर जी कहते हैं कि आप उसी भीमसेन, फिर बाद में तो धृतराष्ट्र को मालूम चल गया ये सब लोह का भीम था, असली भीम नहीं था। तो विदुर जी कहते हैं उसी भीम के द्वारा दिए हुए टुकड़े को तुम खा खा करके जी रहे हो, और बहुत बड़ी बात कही है भाई, आदत्य गृह पालवत, जैसे कुत्ते को टुकड़े डाल दिए जाते हैं, टुकड़ा भों भों करके मकान की रक्षा करता है, ऐसे इनके टुकड़े कुत्ते के समान खा करके तुम इनकी रक्षा कर रहे हो, या शर्म नहीं आती? तुम्हारा जीवन कितना खराब हुआ है। तुमने इनको अग्नि दी, तुमने इनको जहर दिया, तुमने इनकी स्त्री का भरी सभा में अपमान किया, इनका राज्य लिया, धन लिया, और आज उनके सामने तुम पूंछ हिला हिला करके जीवन निकाल रहे हो। यदि हमारी बात मानते हो तो अभी के अभी तुमको इस घर से छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, चलो मेरे साथ उत्तराखंड में। धृतराष्ट्र की एकदम अंधी आंखों में होश आ गया कि अच्छा भैया, हमने तुम्हारा बहुत तिरस्कार किया, बहुत अपमान किया, लेकिन तुम तो हमें कल्याण के लिए बता रहे हो, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। गांधारी भी साथ में हो गई और धृतराष्ट्र भी चले गए। दोनों का दोनों आधी रात को वहां से हस्तिनापुर को छोड़ करके जंगल में चले गए। अब प्रातःकाल युधिष्ठिर जी महाराज उठे। हमारी भारतीय परंपरा है भाई, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए और पहला शब्द भगवान का नाम लेना चाहिए और फिर उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करें और फिर जल का स्पर्श करें, ये हमारी चर्या है। युधिष्ठिर जी महाराज ने ऐसा करने के बाद फिर देखा कि माता पिता को प्रणाम करें। यज्ञ आदि करने के बाद जो ही माता पिता को प्रणाम करने के लिए महल में गए तो वहां न तो धृतराष्ट्र है, न गांधारी है, न ही विदुर जी है। उन्होंने संजय से पूछा, संजय क्या बात है, आज हमारे माता पिता कहां गए, चाचा कहां गए? संजय ने कहा, पता नहीं कहां चले गए, मैं तो खुद ठगा गया, हमको तो पता ही नहीं वो कहां चले गए। युधिष्ठिर जी महाराज विलाप करने लगे, इतने में ही तुम्बुरु के साथ में नारद जी आ गए। नारद जी आए तो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि महाराज, आप तो सब जानने वाले हैं, बताओ हमारे पिता कहां गए? कहने लगे, देखो बेटा, सारा संसार भगवान के संकल्प से गुंथा हुआ है भाई, यहां आना जाना बिछोड़ना सब भगवान के संकल्प से होता है। यदि तुम किसी प्रकार से अपने पिता के विषय में शोक मत करो। देखो, आत्मा को तुम मरने वाला मानो तो भी शोक करने की जरूरत नहीं, आत्मा को नित्य मानो तो मरने की तो किसी प्रकार से शोक करने की जरूरत नहीं। मरता तो है नहीं, लेकिन मरने वाला मान भी लो तो भी किसी प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं, कि मर गया तो अब क्या होगा। और अमर है, अमर मानते हो तो भाई वो मरता ही नहीं, फिर शोक करने की क्या जरूरत है। इसलिए शोक मत करो, सब भगवान के संकल्प से ही होता है, आपको थोड़ी शांति रखनी चाहिए। देखो, धृतराष्ट्र गांधारी के साथ इस समय में हिमालय से दक्षिण की ओर, जहां गंगा जी के 7 धाराएं निकलती है, सप्त सरोवर, वहां पर गए हुए हैं। वहां विदुर जी के उपदेश से अपने श्वासों को रोक लेंगे, इंद्रियों को रोक लेंगे, और रोकने के बाद जिस प्रकार से घड़े का आकाश है वो महाआकाश में लीन होता है, इस प्रकार से वे अपने स्वरूप को परमात्मा में लीन कर देंगे। उनको खोजने के लिए मत जाओ। 7 दिन के बाद युधिष्ठिर जी, ये धृतराष्ट्र जी यहां संसार में नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। अब वो उनकी मृत्यु बहुत अच्छी हो रही है, तस्यांतरायो मैवा भू, उनके बीच में जाकर उनके खोज करने का ये काम मत करो, उनके परमात्मा की प्राप्ति में बाधा पड़ेगी। और वो जिस ढंग से जैसा जाना चाहते हैं वैसा उनको जाने दीजिए, और जो करना चाहते हैं सो करने दीजिए। कहते हैं आज से 5वें दिन ये बात हो जाएगी। विदुर जी महाराज फिर वहां से प्रभास क्षेत्र की तरफ चले जाएंगे। आप सब हर्ष और शोक से ऊपर उठ करके और भगवान का भजन करते हुए प्रजा का पालन पोषण कीजिए। ऐसा कहकर के युधिष्ठिर जी महाराज और नारद जी, युधिष्ठिर जी को उपदेश देकर के नारद जी महाराज चले गए। युधिष्ठिर जी ने धैर्य धारण कर लिया। इधर द्वारिका में गए हुए 6 महीने हो गए, अर्जुन को वापिस लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर जी महाराज के पास में भीमसेन खड़े हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भीमसेन, क्या बताऊं, ये कोई कलयुग की छाया पड़ रही है क्या? कलयुग आ गया क्या पता? कि देखो, हमारे मन में भी तरह तरह की बातें आती है, लोगों का भी तरह तरह का व्यवहार देखते हैं। जिम्मा प्रायम व्यवहारितम, लोगों का व्यवहार बहुत कपटता पूर्वक होने लग गया। अरे, जिस बात के लिए लोग सत्यता के लिए लड़ते थे, आज वे सत्यता को छोड़ करके और पाप के लिए आपस में लड़ते हैं, इससे बढ़कर और क्या कलयुग की बात आएगी। देखो, हुआ यूं, एक बार भगवान श्री कृष्ण भी वहां सभा में मौजूद थे, युधिष्ठिर जी भी मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। उस समय में युधिष्ठिर के पास में एक विवाद आया। विवाद ये आया कि 2 आदमी आए, एक उनके पास में बहुत अच्छा मटका था, उस मटके के अंदर सोने की असरफियां थी, मोहरे थी। वो लेकर के दोनों आदमी आए और महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे, महाराज, हम दोनों की कुछ आपस में लड़ाई हो रही है, उसकी आपको पंचायती करनी पड़ेगी, न्याय करना पड़ेगा, हमको न्याय दिलाइए। कि बोलो भाई, क्या बात है? कहने लगे, देखो महाराज, एक हमारा मकान था, हमने मकान इन महाशय को बेच दिया, अब बेचने के बाद हमको तो मकान की कीमत मिल गई, अब मकान इनका हो गया। अब ये मकान लेने के बाद उस मकान को नए ढंग से बनाने लगे तो मकान को तोड़ने पर इनको हमारे पूर्वजों का रखा हुआ कोई सोने की असरफियों से भरा हुआ घड़ा मिल गया। घड़ा मिल गया तो ये हमारे पास आए कि भैया ये घड़ा तुम रखो, हम तो नहीं रखेंगे, हमने तो मकान की जमीन की कीमत दी है, असरफियों की कीमत नहीं, तुम रखो। हमने इनसे कहा कि देखो जब तक उस जमीन पर मकान पर हमारा अपनत्व था तब तक तो यहां जो कुछ था सो हमारा था, जब हमने आपको ये बेच दिया, बेच देने का अर्थ है कि हमने हमारा अधिकार इस जगह पर नहीं रखा, अब यहां जो कुछ भी मिले वो आपका, न मिले आपका, जो कुछ है सो आपका है, हमारा नहीं है, इसलिए हम तो कहते हैं कि इनका है और ये कहते हैं हमारा है। अब बताओ महाराज ये पाप का धन कौन रखना चाहे, क्या करना चाहे? युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि वाह मेरी प्रजा में देखो धन के त्याग की लड़ाई हो रही है, धन के ग्रहण की नहीं, धन के त्याग की लड़ाई हो रही है, बड़े प्रसन्न हो गए सब। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि भाई ये तो निर्णय मैं कैसे करूं, भगवान की ओर देखने लगे, भगवान भी नीचा मुख करके बैठ गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा महाराज कोई हमारे तो दिमाग में बात आई नहीं, क्या करें हम? अच्छा ऐसा करो भाई, ये तुम्हारा जो मटका है ये ले जाकर के राज के कोष में जमा करा दो, न तो तुम्हारा है न तुम्हारा है, जिसके ऊपर किसी का भी हक नहीं उस पर राजा का हक होता है। कहा ये बात ठीक है। अब वो मटका ले जाकर के राजकोष में रखवा दिया और दोनों कह दिया ठीक आप अपने अपने घर जाओ, घर भेज दिया। उनके चले जाने के बाद युधिष्ठिर जी से कहा भगवान ने कि देखो युधिष्ठिर इस घड़े में से एक भी असर भी किसी प्रकार से कम न हो जाए ऐसा प्रबंध करना। क्यों महाराज? ये जब राज का हो गया तो राजा के प्रजा के काम में लगा देंगे ना, इसी असरफी के घड़े के लिए दोनों एक बार फिर लड़ने के लिए आएंगे, और जिस दिन ये लड़ने के लिए आए उस दिन समझना अब कलयुग आ गया है, राजपाट छोड़ के तुम यहां से भग जाना और ये समझ लाना कि अब कृष्ण इस धरा पर नहीं है। कि अच्छी बात है महाराज। अब वो भीमसेन से आपस में बात कर रहे थे, इतने में वो दोनों अपने अपने घरों पर बैठे हुए सोचते हैं कि अरे मेरे जैसा कोई संसार में मूर्ख होगा, असरपियों से भरा हुआ मेरे पूर्वजों का घड़ा वो बेचारा स्वतः स्वाभाविक मेरे पास लेकर आया और मैंने स्वीकार नहीं किया, अरे मेरे पूर्वजों का मुझे स्वीकार करना चाहिए था। उसके मन में ये आया कि अरे मेरे जैसा कोई मूर्ख होगा, मेरे उसको तो पता ही नहीं कि मेरे पूर्वजों का कोई धन है, यहां पता होता तो ले जाता, अब क्या उसका है कि कहीं है, मैं क्यों कहता कि तुम्हारा है तुम्हारा नहीं, जो ये घड़ा निकला मैं मेरी को मेरे यहां कब्जे में रखता, क्यों मैं ले गया उसके पास। इस प्रकार से बेचारे राजा के पास जाएंगे और कहेंगे कि तो हमारा है, उसने भी देखा कि हमारा है। अब दोनों ने एक साथ विचार किया और अपने अपने घरों से रवाना हो गए। उसको तो ये पता नहीं कि वो भी रवाना हो चुका और उसको भी ये पता नहीं कि वो रवाना हो चुका। दोनों के दोनों रवाना होकर के वहां एक साथ युधिष्ठिर जी के वहां पर पहुंचे। युधिष्ठिर जी ने बोलो भाई क्या बात है कि महाराज उस दिन तो हमारे से गलती हो गई, आज हमारे अच्छा और सही विचार तो आज पैदा हुआ है हमारे। कि क्या पैदा हुआ भाई? कि महाराज वो असरफियों का जो घड़ा है वो तो मेरे पिताजी का था, बाप दादों का था, तो वो तो महाराज मुझे ही मिलना चाहिए ना, मैंने तो मकान बेचा है जमीन बेची है, वो मोरों का घड़ा तो मैंने बेचा नहीं, तो वो तो मुझे ही मिलना चाहिए। उसने कहा कि नहीं महाराज मैं भी इसी बात के लिए आया हूं कि उस दिन तो हमसे गलती हो गई, आज हमारे ठीक विचार पैदा हुआ है, जब इन्होंने बेच दिया तो ये यहां क्या मांगते हैं, यहां कुछ भी निकले तो यहां पर यदि सांप निकलता तो सांप अपने घर ले जाते क्या है? हम कहते हैं सांप निकला है ले जाओ, घर नहीं ले जाते, असरफियों का घड़ा निकला तभी ले जाने के लिए तैयार है, यहां जो कुछ मिलेगा हमारी जिम्मेदारी हमारा ही अपना है, तो महाराज वो घड़ा तो हमको मिलना चाहिए।